शिक्षार्थियों और श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं एक कविता पर, और ये कविता है इसे जगाओ। ये चर्चा हम आरंभ करें इससे पहले मैं आपके अनुभवों की ओर आपको ले जाना चाहूँगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है और आप अपने घर पर अपने माता पिता को, किसी घर के बड़े को कहकर सोए हैं कि आपको समय पर जगा दें, और किसी कारणवश आपके जो वो बड़े हैं वो शायद भूल गए, और सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो आप देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, मैं लेट हो गई हूँ, और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, भगदड़ मचाते हैं, और आपको पहले से इस बात का शक हो जाता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आज आपकी आँख ही देर से खुली, आज आपकी माता ने, आपके पिता ने आपको समय पर उठाया ही नहीं। आपको कभी ऐसा हुआ? और ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि आप उस व्यक्ति से आप नाराज़ भी होते होंगे इस बात पर कि मुझे समय पर क्यों नहीं उठाया। हमारे साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वाकये होते हैं, और ये एक सामान्य सी बात है, हर घर की बात है, ये हर व्यक्ति के साथ इस तरह के अनुभव होते ही हैं। तो आज की जो ये कविता है हमें कहीं ना कहीं इस बारे में बता रही है कि हमें जागृत रहना है, हमें समय पर जागृत रहना है, समय पर कर्मशील रहना है, तभी हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति कर सकेंगे, अपने देश को भी उन्नति के पथ पर प्रशस्त कर सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कितना सोना पसंद करेंगे। सोना बहुत ज़रूरी है, हम दिन भर काम करते हैं, उसके बाद हमें इतनी थकान होती है कि हमें नींद तो आती ही आती है। इस बारे में भी बहुत बात होती है कि हमें कितना सोना चाहिए, कितने घंटे हमें सोना चाहिए, हमें 5 घंटे सोना चाहिए, 6-7 या कितने घंटे हमें हमारे लिए पर्याप्त रहते हैं कि हम बिल्कुल तरोताज़ा होकर दोबारा से एक अगले सुबह का हम स्वागत कर सकें और अपने काम में लग सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नींद आने में ही देरी हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत सारी और बहुत सारे भाव होते हैं हमारे मन में, जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो हमें पाने होते हैं, और हम उन लक्ष्यों को पाने की चिंता में कह लीजिए या उनके उत्साह में कह लीजिए, हमें नींद नहीं आती है। कई बार आपके घर पे भी आपको इस बारे में डांट भी पड़ती होगी कि चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई है, अभी नहीं सो रहे हो, सुबह नहीं उठोगे, यानी समय पे सो जाओ ताकि उस काम को और अच्छे ढंग से कर सको। लेकिन कितना, आपको ये खुद ही निर्धारित करना है कि आप कितना आराम करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा काम भी तो करना है। तो इसलिए हम इस कविता पर चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कर्मशील रहने के लिए कितना परिश्रम करने की ज़रूरत है, कितना अगर हम आराम करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा आराम है, जो हमारी नींद है, वो हमें कहीं ना कहीं हीन भावना से भर दे जब हम जगें। इतना तो ना सोए ना हम, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो इस चर्चा के हमारे कुछ उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों, कि हम समय पर सजग रहने का महत्व जो है उसको स्पष्ट कर सकेंगे। जो व्यक्ति सोते रहते हैं और जो व्यक्ति जागते हैं, समय पर जागते हैं, उनका जो व्यवहार है उसमें क्या अंतर है, उसका विश्लेषण हम कर सकेंगे। किसी विपत्ति से घबराकर भागना चाहिए या सामने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार कर्म करना चाहिए, इन दोनों स्थितियों के बीच क्या अंतर है, हम इस बारे में भी उल्लेख कर सकेंगे। जीवन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है, अगर हम सही समय पर सही काम करें तो इस बात का क्या महत्व है हम इसे समझकर स्पष्ट कर सकेंगे। इस कविता का काव्य सौंदर्य, जाहिर सी बात है कि जब हम कविता की बात करते हैं तो उसका काव्य सौंदर्य तो हम उसका मुख्य पक्ष होता ही है, तो हम उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कर सकेंगे। और कविता की भाषा कैसी है इस भाषा पर भी टिप्पणी हम कर सकेंगे। तो इस तरह से ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों। हम इस कविता को एक बार पढ़ते हैं और फिर इसके थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर हम चर्चा करते हुए चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसमें क्या क्या कहने का प्रयास किया है और आपको क्या संदेश देने का प्रयास किया है। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब हम जगाने की बात करते हैं तो हम कर्मशील होने का संदेश देते हैं कि कर्मशील बनो, काम करो, जागो, उठो, जागो, लगातार काम करो। तो आपके पाठ्यक्रम में ये कविता रखी गई है तो एक स्पष्ट सी बात है, स्पष्ट सा संदेश है कि आप सब शिक्षार्थियों को कर्मशीलता का संदेश दिया जा रहा है। तो हम सबसे पहले ये कविता पढ़ते हैं और एक बार आप ध्यान से इसे सुनिए और जानने का प्रयास कीजिए कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो इससे आगे तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। तो ये बहुत ही छोटी सी कविता है, इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो शब्द आया है, जो संबोधन आया है, वो आया है भाई। हम भाई संबोधन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हमारे और दूसरे व्यक्ति के बीच बहुत आत्मीयता है, बहुत निकटता है। भाई राजेश, ज़रा ये काम तो कर दो, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इस तरह का संबोधन इस बात का द्योतक है, इस बात को बताता है कि जो कवि है वो सूरज से बहुत ही आत्मीयता से बात कर रहा है, जैसे वो किसी अपने बहुत निकट से बात, निकट संबंधी से बात कर रहा है, जैसे ये सूरज उसका दोस्त है, उसका मित्र है। हम जब अपने किसी मित्र को अनुरोध करते हैं कि ज़रा सा ये काम कर दो ना, तो बिल्कुल उसी शैली में, उसी सहजता से, उसी अनुरोध वाली भाषा में यहाँ कवि सूरज से कह रहा है। और क्या कह रहा है कि ज़रा इस आदमी को जगाओ, कि इस आदमी कौन है। ये आदमी कोई भी हो सकता है, ये आदमी आप भी हो सकते हैं, ये मैं भी हो सकती हूँ, ये आप में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो यहाँ कवि सूरज से निवेदन कर रहा है, निवेदन भी नहीं कहें, हम इसे अनुरोध कहें, जो मित्र एक दूसरे को करते हैं कि भाई सूरज, इस आदमी को जगाओ। हमें नहीं मालूम, कवि को नहीं मालूम ये आदमी कौन है, यानी ये आदमी कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इस आदमी को जगाओ। अब सूरज से आदमी को जगाने के लिए क्यों कहा गया है? अगर आप इस बात पर विचार करें तो आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि हर रोज़ सुबह जब सूरज उगता है तब लगता है कि अब दिन की शुरुआत हो रही है, और कभी आप सूरज उगने से पहले उठ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं विजय भाव आपके मन में आता है कि देखो मैं तो सूरज निकलने से पहले जग गई, मैं तो इतने समय से जगी हुई हूँ। तो सूरज के उदय होने का अर्थ होगा कि सारा विश्व, सारी प्रकृति फिर से कर्मशील हो गई, फिर से सक्रिय हो गई, अपने काम में लग गई है। ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा कि कभी आप देर तक सो रहे हैं तो आपके घर के बड़े कह रहे हैं कि सूरज देखो कितना चढ़ाया है, अभी तक नहीं उठे हो, उठो। तो सूरज का उदाहरण देकर आपको बताया जाता है कि सूरज को आए हुए इतना समय हो गया है, यानी सूरज आ रहा है, यानी सक्रिय होने का समय आ रहा है। सूरज संकेत है, सूरज प्रतीक है कर्मशीलता का। तो सूरज आ गया है तो जागो। तो उसी तरह से यहाँ सूरज को कहा जा रहा है कि इस आदमी को जगाओ। और आगे क्या कहते हैं, भाई पवन। अब पवन से भी वही आत्मीय रिश्ता कवि ने जोड़ा है और कहा है, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, एक ताजगी भरी उमंग आपके मन में तन में आ जाती है, तो जो सुबह की का जो पवन है वो बहुत ही मंद गति से चलता है और एक तरह से सबको ताजगी से भर देता है, स्वास्थ्य लाभ करता है। आपको भी कहा जाता होगा कि ताज़ी हवा में जाओ, सामने जो पार्क है उसमें घूम कर आओ, ताज़ी हवा लो, लंबी लंबी सांस लो, क्योंकि जो हवा चल रही है, जो ताजगी भरी हवा है, वो आपके को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी, आप उससे सेहतमंद होंगे। तो इसीलिए पवन को ये आग्रह किया गया है कि पवन, सीधा पवन नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, भाई पवन, वही संबोधन है आत्मीयता वाला, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यानी जब वो हवा चलेगी तो कहीं ना कहीं उसके जो रोम हैं वो स्पंदित करेगी और एक सिहरन उसके शरीर में आएगी और वो जागेगा। ये जागने के लिए पवन का सहारा लिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पवन इस आदमी को हिलाओ, अपने हवा से इसे हिलाओ। वह आदमी जो सोया पड़ा है, अब एक है शाब्दिक अर्थ, एक है अविदा में जिसको आप देखते हैं कि सोया पड़ा है, यानी वो वास्तविक रूप में वह नींद में है, उसे सचमुच नींद आई हुई है। तो उसे तो आप उठा सकते हो, आपने उसे हिलाया कि वो उठ जाएगा, आप उसे आवाज दोगे वो उठ जाएगा। लेकिन ये आदमी कौन है? ये आदमी है जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। यानी ये व्यक्ति वैसे तो जागृत है लेकिन वास्तविकता को देखने से ये घबराता है, ये वास्तविकता से नजर चुरा रहा है, इसलिए इसने अब वास्तविकता से आंखें मूंदी हुई हैं, ये वास्तविकता से दूर है, ये सच से बेखबर, इसे नहीं मालूम है वास्तविक दुनिया में हो क्या रहा है, पूरी तरह से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। यानी यह व्यक्ति सपनों में खोया हुआ है। कुछ ऐसे सपने जो हमें नींद से जागृत करके हमें काम की ओर प्रेरित करें, लेकिन ये व्यक्ति उस तरीके से नहीं सोया हुआ है, ये व्यक्ति सच से बेखबर है, इसे नहीं मालूम है कि सत्य क्या है, क्या हो रहा है उसके आसपास। ये व्यक्ति सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ, सुबह का दृश्य है और पक्षी जो हैं वो चहचहाए नहीं, तो क्या उसे सुबह माना जाएगा? उसे तो बिल्कुल भी सुबह नहीं माना जा सकता, क्योंकि सुबह आने के जो संकेत हैं वो यही तो हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, आकाश में लालिमा छा रही है, मंद मंद पवन चल रहा है और जो पक्षी हैं वे चहचहा रहे हैं अपने मधुर वाणी में, ची 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 ची, उनकी जो आवाज़ है वो एक संगीतमय वातावरण उत्पन्न कर देती है। तो उसकी जो पंछियों की जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ है, संगीतमय है लेकिन बहुत तेज़ है। तो यहाँ पंछी को भी इस व्यक्ति को जगाने के लिए आग्रह किया जा रहा है, और किस रूप में किया जा रहा है? उसका संबोधन बिल्कुल वही है जो पवन और सूरज के लिए प्रयोग किया गया था, यानी भाई। तो यही कहा जा रहा है कि भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। यानी इस आदमी का जागना बहुत ज़रूरी है, इस व्यक्ति का निरंतर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इसने अपने लिए, अपने समाज को उन्नति पर ले जाने के लिए जो लक्ष्य गढ़े हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके लिए इसका योगदान बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये व्यक्ति तो सच को जानता ही नहीं, ये व्यक्ति तो सच से बिल्कुल मुंह मोड़े हुए पता नहीं कौन से सपने देख रहा है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए काम करना भी तो उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से सूरज, पवन और पंछी को आग्रह करके व्यक्ति को जगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और सिर्फ जगाने की बात नहीं की जा रही है कि हाँ इसे जगा दो, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद जगा दो, ऐसा नहीं है। आप भी तो जब अपने घर में कभी नाराज़ इसी तरह की किसी बात पर नाराज़ होते होंगे और आपकी माँ मान लीजिए ये कहेगी कि हाँ मैंने अभी तुम्हें जगा दिया, 7:30 हो गए हैं तो उठ जाओ, नहीं मैंने आपको 5 बजे जगाने के लिए बोला था, 7:30 तो मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। तो ये जो पहले से ही मतलब लेट हो जाने वाली जो बात है, इससे क्या होगा कि जागने का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा। क्या फ़ायदा इतनी देरी से जगने का? अगर मैं 5 बजे जागता, मैं 5 बजे जागती तो मैं अपना काम पूरा कर पाती, मैं परीक्षा की तैयारी कर पाती या कोई और कार्य कर पाती। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो अगली पंक्तियां हैं उसमें यह बात बताई गई है कि सिर्फ जगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है समय पर जगाना। तो इसीलिए कहा है इन तीनों उपादानों को कि आप लोग सिर्फ जगाओ नहीं, वक्त पर जगाओ। अगर वक्त पर नहीं जगाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बुरा होगा। और बुरा क्या होगा? आगे कहा है कि नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, यह है जब वक्त नहीं होगा। अगर आपको 5 बजे जागना था और आपको 7:30 बजे जगाया गया तो आपके लिए वो बेवक्त हो गया, वो वक्त सही नहीं है, वो गलत वक्त है, इस समय जगाने का कोई लाभ ही नहीं होगा। तो यह व्यक्ति भी जब बेवक्त जागेगा, जागेगा तो सही लेकिन जब वो बेवक्त जागेगा तो क्या होगा? आप जब लेट हो जाते हैं और बहुत देरी से जागते हैं तो क्या होता है? वही इसके साथ होगा। क्या होगा? तो जो आगे निकल गए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो समय पर जागे, जिन्होंने सपने भी देखे और सपनों को पूरा करने के लिए काम भी किया, मेहनत भी की, परिश्रम भी किया, लगन से काम किया, उन लोग वे जो लोग होंगे वो तो अपने लक्ष्य की ओर और ज़्यादा अधिक दूरी तक बढ़ गए हैं। यह व्यक्ति जो सोता रह गया, जो सच से बेखबर रह गया, जो जागा ही नहीं, जो सिर्फ सपने देखता रहा लेकिन उसने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, तो ये व्यक्ति तो बहुत पीछे रह जाएगा ना। तो जब ये व्यक्ति बेवक्त जागेगा तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये, यानी अपनी कर्महीनता को ढकने के लिए जो काम इसने नहीं किए, जो इसने जो इससे अपेक्षित था कि ये करे, वो कार्य जब नहीं हुए हैं और ये पीछे रह गया है, और उस क्षण उसको पता चलेगा कि अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ और अब ये लक्ष्य मैं कैसे पाऊँगा, तो ये देखेगा कि और लोग तो बहुत आगे निकल गए, वो लोग तो जो लक्ष्य उन्होंने रखे थे वो तो उस बिल्कुल उस लक्ष्य तक पहुँचने वाले हैं। तो उस समय ये घबरा जाएगा, ये तुलना करेगा ना कि मैं इतना पीछे रह गया, वो व्यक्ति इतने आगे निकल गए, अब क्या हो। तो वो जो बीच का अंतर है उसको पाटने के लिए, ये उन लोगों को उन लोगों तक पहुंचने के लिए ये घबरा के बहुत तेज गति से भागेगा। लेकिन कार्य की एक अपनी निश्चित अवधि तो होती है ना, अगर यह व्यक्ति जल्दी करेगा तो जरूरी नहीं है कि ये उन लोगों के साथ पहुंच पाए, क्योंकि इसने बीच में हर सोपान पर, हर चरण पर जितनी मेहनत करनी थी, जितनी लगन दिखानी थी, जितना परिश्रम करना था, वो तो इसने किया ही नहीं। ये तो सीधा गति से, बहुत तेज़ी से ये जल्दी जल्दी वो काम करके उन लोगों तक पहुंचना चाहता है, जबकि ऐसे नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। उसे उतने कर्म तो इसको, उतना कर्तव्य तो उसे निभाने ही थे, वो उसने नहीं किए हैं। तो ये सिर्फ घबराएगा, छटपटाएगा, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए इसे जगाओ और वक्त पर जगाओ। आगे कवि कहते हैं, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, और क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ, पवन, इसे हिलाओ, पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। यानी जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये जो लोग इससे आगे निकल गए, इस व्यक्ति से आगे निकल गए हैं, ये उन्हें पाने के लिए घबरा के भागेगा। लेकिन घबरा के भागने की स्थिति अलग है और क्षिप्र गति अलग है, जिसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति सक्रिय है, जो व्यक्ति तेज है, जो सही समय पर सही कार्य करता है और तेजी से करता है, सही गति से करता है, तो जो ये गति है ये बिल्कुल अलग है, और उसकी वो जो घबरा के भागने की जो गति है वो बिल्कुल अलग स्थिति है। ये घबरा कर भाग कर ये भागने से ये उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, ये उस लक्ष्य को नहीं पा सकेगा। और क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, यानी जिस समय आराम करना है उस समय वह आराम करता है, जिस समय कार्य करना है, जिस समय मेहनत करनी है उस समय वह मेहनत करता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर ये व्यक्ति बेवक्त जागा तो ये देखेगा कि ये पीछे रह गया है, और ये उस अंतर को समाप्त करने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए ये व्यक्ति घबरा के भागेगा, बहुत तेज गति से भागेगा, लेकिन इसके घबरा के भागने का कोई भी लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो तेज गति होती है, ये जो क्षिप्र गति होती है, ये अलग बात होती है। ये बात होती है, ये व्यक्ति जो क्षिप्र है, ये वो है जो सही क्षण में सजग है, जो सही समय पर सही कार्य करता है, जो जागृत है, जिसे मालूम है कि इस समय मुझे क्या काम करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास आराम, जो सजग व्यक्ति है उसके पास आराम करने के लिए बहुत ही सीमित समय हो, लेकिन उसे समय की मांग का पता है। उसे मालूम है कि अगर वो इतनी देर तक काम नहीं करेगा तो ये कार्य पूरा नहीं होगा, तो वो उस आराम का जो समय है उसकी वो कटौती कर लेता है और अपना जो समय है वो परिश्रम से, लगन से, पूरे धैर्य से वो अपने उस काम को पूरा करने में लगा रहता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो सही समय पर अपने सही गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जो भी वो काम करना चाहता है। आपके मन में भी बहुत सारे सपने होंगे, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप कोई समाज सुधार का कार्य करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई नया शौक है आपका जिसमें आप और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में आप जाएं। इस तरह से आप, आपके सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं, छोटे लक्ष्य भी हो सकते हैं और ये लक्ष्य बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में एक जो एक समान बात जो सब बातों पर लागू होती है वो ये है कि आप सही क्षण में सही समय पर सही कार्य करें। जिस समय आपको कार्य करना है, जिस समय आपको मेहनत करनी है, उस समय आप मेहनत करें। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी स्थान पर जाना है, कोई परीक्षा देनी है या कोई और कार्य के लिए आपको जाना है और आप घर से ही देरी से निकले हैं? अगर आप घर से देरी से निकले हैं तो जाहिर सी बात है आप लेट हो जाएंगे, आपकी बस निकल जाएगी, आपकी जो रेल है वो निकल जाएगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ निराश होंगे, दुखी होंगे और आपको लगेगा कि आपने कितनी मेहनत यहाँ तक इस परीक्षा की, इस कार्य की तैयारी में आपने इतना समय लगाया था और अब वो सब व्यर्थ हो गया। यानी आपको सही क्षण पर, सही समय पर आपको सजग रहना होगा, जागृत रहना होगा कि किस टाइम आपको ये कार्य करना है। अगर आप अपना जो समय है उसका सही निर्धारण नहीं करेंगे, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रेल जो है वो 9 बजे की है और 9 बजे की रेल है, तो आप एक तरह से ये गणना कर लेते हैं कि जो आपका निवास है, जहाँ पर आप रुके हुए हैं, उसकी दूरी कितनी है और कितना समय आपको उस ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचने में लगेगा। तो आप इसकी गणना करके आप ये देख लेते हैं कि आपको कम से कम आप 10-15 मिनट का फालतू समय लेकर चलते हैं। अगर आपको आधा घंटा स्टेशन तक पहुंचने में लगता है तो आप कहते हैं कि आप 45 मिनट आप उसके लिए रख लेते हैं कि कम से कम 45 मिनट अगर सड़क पर भी किसी तरह का ट्रैफिक मिलता है, बसों की या यातायात की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, तो उस स्थिति को भी आप पहले से ही आप उसके बारे में सोच के आप 15 मिनट के करीब और समय लेते हैं और आधा घंटे के स्थान पर आप 45 मिनट पहले अपने घर से निकलते हैं और आप निर्धारित कर लेते हैं कि मैं इतने बजे अपने घर से निकलूंगा। लेकिन उससे पहले की भी तो तैयारी आपकी बहुत सारी है। आपको सुबह उठना होगा, आपको जो भी सामान अपने साथ लेकर जाना है आपको उसका भी ध्यान रखना होगा, आपको अपने नित्य कर्मों से भी निवृत्त होना पड़ेगा, नहा धोकर आपको जाना है, आपको नाश्ता भी करना, कितने सारी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें आपके उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आपके बीच में वो पड़ाव हैं जिन्हें आपको पार करना है। आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए, उस समय आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपकी जो वेशभूषा है अवसर के अनुकूल नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आपने अपना आधा संघर्ष तो आपका वैसे ही आप हार गए हैं, तो आपको अपनी वेशभूषा पर भी ध्यान देना होगा, आपको सारी तैयारियां ये सब करके रखनी है। तो आप उस इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप निर्धारित करेंगे कि अगर आप सुबह मान लीजिए 5 बजे अगर आप उठते हैं तो आप इतना समय अपने नित्य कर्मों को देंगे, इतने समय में आप नहा धोकर अब तैयार होकर और उतने 45 मिनट का अंतर रख के आप अपने घर से निकलेंगे तो आपको आपकी रेल भी आप पकड़ पाएंगे और आप अपने गंतव्य स्थल पर भी समय पर पहुंच पाएंगे। और आपको इस बात का आत्मविश्वास भी होगा कि आपने सभी काम सही ढंग से किए हैं और अब आपको अपना साक्षात्कार देना है, इंटरव्यू देना है, कोई परीक्षा देनी है, किसी से मिलना है, तो वो काम भी बहुत अच्छे से होगा क्योंकि आपने अपना काम समय पर किया है। तो ये भी आपके दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए कि आप अपना समय प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि समय प्रबंधन ही नहीं होगा तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह ही घबरा कर भागेंगे। और यहाँ कवि ने भी हमें ये बताया है कि घबरा के भागना अलग है, यानी घबरा के भागने से जो ट्रेन निकल गई है आप उसे थोड़ी ना पकड़ पाएंगे। तो इसलिए शिक्षार्थियों, समय प्रबंधन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने कार्यों को सुचारू ढंग से, मेहनत से, लगन से और परिश्रम से हमें ये कार्य करने होंगे। तो शिक्षार्थियों, ये हमारी कविता थी और इस कविता का जो भाव था और व्याख्या थी, मैं समझती हूँ कि आपको भली भांति समझ में आए होंगे। और इन जिस रूप में मैंने इस कविता की व्याख्या की, इसी तरह से आप अपने स्तर पर भी, अपनी समझ से भी इसकी और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से इसमें उदाहरण दे सकते हैं और इसे बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं इस कविता के भाव सौंदर्य पर, तो यहाँ आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कवि ने किसी अन्य व्यक्ति को, इस व्यक्ति को जगाने के लिए आग्रह नहीं किया है, उसने प्राकृतिक उपादानों की सहायता ली है। उसने किस किस की सहायता ली है? उसने सूरज की सहायता ली है, उसने पवन की सहायता ली है और पंछी की सहायता ली है। एक तरह से अगर हम देखें तो ये तीनों उपादान जो हैं वो प्रातः काल को इंगित करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं, ये प्रतीक हैं प्रातः काल के आगमन के लिए। और प्रातः काल किस बात की द्योतक है? हमारे जागने की द्योतक है, हमारे सक्रिय होने की द्योतक है। तो इस तरह से इस कविता में इन प्राकृतिक उपादानों ने हमें जागृति का संदेश दिया है, क्योंकि ये तीनों उपादान अपने आप में ही जागृति के प्रतीक हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं कि सूरज किस तरह से ऊर्जा प्रदान करता है, पवन किस तरह से हमें ताजगी से भरता है और पक्षी किस तरह से अपनी चहचहाहट से एक बहुत ही सरस सा वातावरण बना देते हैं और किस तरह से हमें इस बारे में संकेत देते हैं कि हम अपने सपनों से जागें और हम अपने कार्यों को करें। जो भी कार्य हमने अधूरे छोड़ दिए थे पिछले दिन, उन्हें हम पूरा करें। तो इस तरह से प्रगति का जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। और जो प्रगति है, जैसा मैंने इस कविता के दौरान, इसकी चर्चा के दौरान भी आपको स्पष्ट किया कि प्रगति की एक अपनी गति है। आपके जल्दी करने से वो प्रगति जो है वो जल्दी जल्दी नहीं होगी। उसकी जो एक निश्चित गति है वो उसी गति पर ही पूर्ण होगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बेवक्त जागने वाला व्यक्ति है, जब वो घबरा के भाग रहा है, तो वह उन लोगों की तरह प्रगति नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी भाग रहा है। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सही समय पर, सही क्षण पर, सही कार्य, सही ढंग से मेहनत नहीं की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि कवि ने बहुत ही आम जनजीवन के उदाहरण लेकर, बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर इस कविता को गढ़ा है, इस कविता को रचा है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया है, ये बात सोचने वाली बात है। तो इस तरह से ये कविता आप, खासकर आप सभी के लिए है यूं तो, लेकिन आप शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको जागृति का संदेश देती है, ये आपको सक्रियता का संदेश देती है। अब हम बात करते हैं इस कविता के भाषा सौंदर्य पर। शिक्षार्थियों, जब हमने इस कविता को पढ़ा तो आपने भी ये बात अनुभव की होगी कि इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल वही भाषा है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और ये बात भी खास विशेष रूप से कवि के संदर्भ में है कि जिस तरह से अन्य कवि बहुत चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और एक चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, उस तरह का कार्य, ऐसा कोई भी कार्य भवानी प्रसाद मिश्र जी ने नहीं किया है। और यही उनकी खास बात है कि उन्होंने बिल्कुल बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक और कह सकते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी संदेश उन्होंने दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो ये भाषा है बहुत सादगी भरी हुई भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, सहज भी है और सरल भी है, और जो भय का संबोधन है ये बहुत ही आत्मीयता से भरा हुआ है। मैंने जब इस कविता पर हमने चर्चा करनी आरंभ की थी तो तभी मैंने आपको बताया था कि हम भय का जो संबोधन है उसका प्रयोग हम वहीं करते हैं जहाँ हम बहुत ही मित्रवत हैं किसी व्यक्ति से, बहुत ही निकटता का संबंध है, हम आग्रह कर रहे हैं कि ज़रा ये काम कर दो। तो उस आत्मीयता से उन्होंने इन प्राकृतिक उपादानों को पुकारा है और कहा है कि भाई सूरज इसे जगाओ, भाई पंछी इसे हिलाओ। तो इस तरह से ये शिक्षार्थियों, ये यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक उपादानों की सहायता से आपको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और जो शैली, जिस शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया, वो वार्तालाप की शैली है। आम आपस में जब हम बातचीत करते हैं, बिल्कुल उसी रूप में ही यहाँ पर इस शैली का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये तीनों जो उपादान हैं, ये हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने साथी हैं, अपने मित्र हैं, और इनको हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को जगा दो, और साथ में फिर वहाँ तर्क दिया जा रहा है कि इसे जगाओ और वक्त पर जगाओ, अगर ये वक्त पर नहीं जागा तो बेवक्त जब ये जागेगा तो घबरा के भागेगा ये। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये हमारी कविता थी, और इस कविता के माध्यम से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी, और जो कह सकते हैं कि एक छवि जो अमूमन समाज में बन जाती है कि अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, 10-15 मिनट देरी हो गई तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, इतनी देर तो हो ही जाती है। तो हम इस आदत को छोड़ें और हम समाज में जो ये छवि है लोगों की, इस छवि को हम बदलने का पूरा प्रयास करें। जिस समय हमें कहीं जाने के लिए कहा गया है, हम उसी समय पर, हम समय की पाबंदी को समझें, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान है। सभी के पास 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में ही हमें अपना सारा कार्य करना है। जो बहुत सफल व्यक्ति है शिक्षार्थियों, वो भी उन 24 घंटों में ही वो कार्य करते हैं। तो वे ऐसे किस तरह से अपना कार्य कर लेते हैं इन्हीं 24 घंटों में कि वे इतने सफल हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, और हम एक अपने अमूमन रोज़मर्रा के काम भी पूरे नहीं कर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो समय का जो महत्व है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसका मूल्य हम कम आंक रहे हैं, और हम लापरवाह हो रहे हैं समय के प्रति। तो हमें समय की के प्रति सजग रहना है, समय की पाबंदी रखनी है, उससे हम में तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। जो हमारे आसपास, जो हमारे परिवार के जन हैं, अगर हम कहीं पर कार्य करते हैं तो हमारे जो सहकर्मी हैं उनमें भी इस बात पर विश्वास होगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल समय का पाबंद है। अगर इस व्यक्ति को ये काम दिया गया है, इस समय पर मांगा गया है, तो इस समय पर ये कार्य पूरा करके दे देगा। तो इस तरह का जो ये प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपकी छवि बेहतर करने में, आपको आत्मविश्वास प्रदान करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप इसको, अगर आप समय को महत्व देते हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये आदत आपको सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप समय का महत्व समझें, सही समय पर सब कार्य करें, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। तो शिक्षार्थियों, ये हमारी चर्चा थी, और मैं उम्मीद करती हूँ इस चर्चा से आपको ये पाठ समझने में लाभ हुआ होगा, और जब आप इसके पाठांत प्रश्नों को करेंगे तो भी आपको, आप अपने जीवन से भी कुछ इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं जिससे आप इस कविता को और बेहतर ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।